नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार खत्म। अब केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। कल से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने मतगणना के सिलसिले में उम्मीदवारों से 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक मांगा पोलिंग एजेंटों का ब्यौरा। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में बढ़ी सुबह शाम की ठंड। पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज। और चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के 4th दिन झारखंड ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आए राजनीतिक दलों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को वह जगह तत्काल छोड़ देना है।
फेज 2 में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्शन कैंपेन पीरियड 5 बजे से समाप्त हो चुका है। वो उसी क्षेत्र पर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वहां पर वोटर नहीं है मतलब उस एरिया का अविलंब कार्य करके बाहर अपने अपने एरिया पर चल जाना है। कहां पोलिंग होने जा रहा है 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां का वोटर का दौरा अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो होटल्स वगैरह मैरिज हॉल ये सब कुछ का चेक करेंगे, इसलिए अविलंब वहां से निकल जाना है।
श्री कुमार ने बताया कि इस चरण में 38 सीटों पर 20 तारीख को मतदान होगा। इसके लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। श्री कुमार ने बताया कि कल से ही पोलिंग पार्टियों को मतगणना केंद्रों पर भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी होने के साथ ही चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा संबंधित आरओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं, वैसा होगी मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगा, केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल होगा। आप लोग के माध्यम से ये भी अनुरोध है, सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें, ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 2400 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी।
झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी साहिबगंज जिले की विधानसभा सीटों की, जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों राजमहल, बोरी और बरहेट के लिए दूसरे चरण में मतदान होना है। वर्तमान में इनमें से 2 सीट झामुमो के कब्जे में है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है। जिले की बरहेट विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा के टिकट से पहली बार चुनाव लड़ रहे गमलियल हेम्ब्रम से है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पिछले 2 बार से इस सीट को जीतते रहे हैं। बात बोरियो सीट की करें तो इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम और झामुमो के धनंजय सोरेन के बीच है। लोबिन हेम्ब्रम पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो के टिकट पर इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि इस सीट पर भाजपा के बागी उम्मीदवार सूर्य नारायण हांसदा जीत हार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। उधर राजमहल सीट पर भाजपा उम्मीदवार अनंत ओझा का सीधा मुकाबला झामुमो के मोहम्मद ताजुद्दीन राजा से है। इस सीट से भाजपा के अनंत ओझा पिछले 2 टर्म से विधायक हैं। इस सीट पर दिग्गज निर्दलीय उम्मीदवार सुनील यादव जीत हार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। अवैध खनन, मानव तस्करी, पलायन, बेरोजगारी, पेयजल, साहिबगंज जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बदले राजनीतिक परिदृश्य में यह देखना रोचक होगा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाता है या फिर NDA यहां बढ़त बनाने में कामयाब होता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
सरकार माने कर मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है। मतदाताओं की टोली चली, वो चली
चलो रे, निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची भैया भाभी बेटा बेटी मेहरू सब निकलो। याद रखना इस बार सब परिवार मतदान।
ये पर्व है हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा इस बार सब परिवार मतदान।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह में राज्यपाल ने विकसित भारत @2047 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाओं की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान की ज्योति से प्राचीन भारत में पूरे विश्व को आलोकित करता था। इससे पहले हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों ने कुलाधिपति से विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने वीरेंद्र राम को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले वर्ष 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी ने वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग 1.5 करोड़ के जेवरात सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किया था। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। इसके साथ ही सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड के साथ ही रांची के कई इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। देश के उत्तरी हिस्सों में पछुआ हवा चल रही है। चेन्नई में चल रही राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप के चौथे दिन आज झारखंड की झोली में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक आए। सरिता कुमारी ने जहां 2 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया, वहीं अमीर रियाज ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार खत्म। अब केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। कल से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने मतगणना के सिलसिले में उम्मीदवारों से 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक मांगा पोलिंग एजेंटों का ब्यौरा। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में बढ़ी सुबह शाम की ठंड। पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज। और चेन्नई में चल रही राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन झारखंड ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।